अभय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज इस विशाल कक्ष में अजीब तरह से गूंज रही थी। यह कोई साधारण कमरा नहीं था, यह एक राजदरबार था, या यूं कहें जो कभी राजदरबार हुआ करता था। चारों ओर खून के सूखे निशान फैले हुए थे, फर्श पर, दीवारों पर, यहां तक कि टूटे स्तंभों पर भी। ऐसा प्रतीत होता था मानो यहां कोई युद्ध नहीं बल्कि एक नरसंहार हुआ हो। अभय की दृष्टि चारों ओर बिखरे कंकालों पर जाती है। वे यूं ही गिरे नहीं थे, हर कंकाल की मुद्रा ये बता रही थी कि वे एक दूसरे से लड़ते हुए मरे थे। कोई आगे की ओर झुका था मानो वार करते समय गिरा हो, कोई पीछे की ओर टूटा हुआ जैसे अंतिम क्षण में किसी घातक प्रहार से बचने की कोशिश की हो। अभय का गला सूखने लगता है, वह आगे बढ़ता है। दरबार के दोनों ओर सिंहासन जैसे ऊंचे आसन दिखाई देते हैं, मंत्री सिंहासन, और हर एक सिंहासन पर एक कंकाल, किसी के सीने में तलवार धंसी हुई थी, किसी की पसलियों को चीरता हुआ भाला अटका था, किसी के शरीर को एक त्रिशूल ने दीवार से जकड़ रखा था। यहां कोई विजेता नहीं था, सिर्फ मृतक थे। अभय की आंखें अंततः दरबार के केंद्र पर टिक जाती हैं और वहीं उसकी सांस अनायास रुक जाती है। बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था, उस सिंहासन पर बैठा कंकाल बाकियों से पूरी तरह अलग था। उसके भीतर अब भी एक राजसी आभा शेष थी, इतनी प्रबल कि मृत्यु भी उसे पूरी तरह छू नहीं पाई थी। उस कंकाल के 8 हाथ थे और हर हाथ में एक और कंकाल जकड़ा हुआ था, मानो मृत्यु के क्षण में भी उसने किसी को छोड़ने से इनकार कर दिया हो। अभय ध्यान से देखता है, जिन कंकालों को उसने पकड़ रखा था उनके वस्त्र अलग अलग थे। 7 कंकाल स्त्रियों के वस्त्रों में थे, फटे हुए पर अब भी पहचान में आने योग्य। उनकी मुद्राएं ये दर्शा रही थीं कि वे केवल दरबारी नहीं थीं, वे कुछ और थीं, कुछ बहुत अधिक निकट। और उन 7 के बीच एक कंकाल ऐसा था जिसने पुरुषों के वस्त्र पहन रखे थे। वह अलग था, उसकी स्थिति, उसका स्थान, सब कुछ, मानो वह इन 7 और सिंहासन के बीच एक सेतु हो। अभय के मन में एक विचार धीरे धीरे आकार लेने लगता है। यह कोई साधारण दरबार नहीं था, यह शक्ति का केंद्र था, बंधन का स्थान था, और शायद बलिदान का। हवा अचानक और भारी हो जाती है, उस राजसी कंकाल की आभा धीरे धीरे पूरे कक्ष में फैलने लगती है। अभय को पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस होता है, ये सब अतीत नहीं है, यह अभी भी जीवित है। और जैसे ही वह सिंहासन की ओर एक और कदम बढ़ाता है, कंकालों के बीच हवा में एक हल्की सी कंपन उभरती है, मानो ये दरबार अब उसकी उपस्थिति को पहचान चुका हो। और अभय समझ जाता है, ये जगह उसे डराने के लिए नहीं बनी, ये जगह उसे परखने के लिए है, और जो परीक्षा यहाँ शुरू होने वाली है वह अब तक की सबसे भयानक होगी। अभय एक बार फिर उस 8 हाथों वाले कंकाल की ओर ध्यान से देखने लगता है, और तभी उसकी दृष्टि उसके वस्त्रों पर टिक जाती है। वह जैसे ही उन वस्त्रों को पहचानता है, उसका हृदय एक क्षण के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि वे वस्त्र किसी और के नहीं बल्कि उसी खलनायक अभय के थे जिसे वह अपने पिछले अस्तित्व में जानता था। यह एहसास उसे भीतर तक हिला देता है, क्योंकि वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसका खलनायक रूप इस प्रकार एक मृत कंकाल के रूप में उसके सामने खड़ा होगा। अभय इसके बाद आसपास खड़े अन्य कंकालों को देखता है, और धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगता है कि वे सभी तांत्रिक अकादमी के मुख्य पात्र थे। उन 8 कंकालों में से 7 स्त्रियों के थे, जिनके वस्त्र ये स्पष्ट दर्शा रहे थे कि वे उसकी कहानी की नायिकाएं थीं, जबकि 8वां कंकाल वही खलनायक अभय था। उन 7 नायिकाओं में से एक नायिका की तलवार सीधे खलनायक अभय के कंकाल की आंख में घुसी हुई थी, मानो उसने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया हो और हार स्वीकार करने से पहले भी वार किया हो। खलनायक अभय के 7 हाथ उन 7 नायिकाओं के कंकालों को भेदते हुए दूसरी ओर निकल चुके थे, और उन हाथों में उनके सूखे हुए हृदय जकड़े हुए थे, जो ये दर्शाते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि पूर्ण विनाश था। उस दृश्य को देखकर अभय को यह स्पष्ट हो जाता है कि खलनायक अभय ने केवल उन्हें हराया नहीं था, बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया था। उन 8 कंकालों में एक और कंकाल था जो सबसे अलग दिखाई देता था, क्योंकि उसका सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग था। अभय तुरंत समझ जाता है कि वह कंकाल नायक का था, जिसे वह भली भांति जानता था। उसे याद आता है कि नायक के पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी, जिसके कारण उसका इस प्रकार मारा जाना लगभग असंभव माना जाता था। अभय आसपास नजर दौड़ाता है, और कुछ दूरी पर उसे एक अलग पड़ी हुई खोपड़ी दिखाई देती है जो धूल में लिपटी हुई थी। ये दृश्य देखकर अभय को यह एहसास हो जाता है कि नायक ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। ये समझ उसके मन को और अधिक विचलित कर देती है, क्योंकि यह घटना नियति के नियमों के विरुद्ध थी। अभय अब पूरी तरह हैरान और स्तब्ध हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि किसी भी कहानी, किसी भी संसार और किसी भी नियम में खलनायक का नायक और नायिकाओं दोनों को समाप्त कर देना संभव नहीं होता। ये कार्य स्वयं नियति के विरुद्ध जाता है। इसके बावजूद उसके सामने खड़ा ये दरबार इस बात का प्रमाण था कि खलनायक अभय ने असंभव को संभव कर दिखाया था और नायक तथा नायिकाओं दोनों का अंत कर दिया था। इस एहसास के साथ अभय के भीतर एक गहरी सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह स्थान केवल उसके अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि उसके भविष्य के लिए एक चेतावनी है। ये दरबार उसके अंत का संकेत नहीं था, बल्कि उस मार्ग की शुरुआत था, जहां से उसकी कहानी अब नियति के नियमों से परे जाने वाली थी। अभय स्तब्ध खड़ा था, उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह किसी भी तर्क, किसी भी नियम से परे था। तभी अचानक खलनायक अभय के कंकाल की आंखों में लाल आग भड़क उठी। वह आग ऐसी थी जैसे किसी मृत शरीर में फिर से आत्मा भर दी गई हो, लेकिन वह आत्मा मानव नहीं थी, वह शुद्ध विनाश थी। अगले ही क्षण खलनायक अभय उस सिंहासन से उठ खड़ा हुआ जिस पर वह सदियों से जड़ की तरह बैठा था। उसके उठते ही पूरा दरबार मानो कराह उठा, हवा भारी हो गई और अभय को अपने सीने में अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके अस्तित्व को तौल रही हो। खलनायक अभय ने बिना किसी भावना के अपने शरीर से जुड़े सातों नायिकाओं के कंकालों को झटके से अलग कर दिया। वे कंकाल हवा में उछले और दीवारों से टकरा कर चटकते हुए टूट गए। कुछ काले स्तंभों से टकराए और उनके टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए। ये दृश्य ये साफ कर रहा था कि उसके लिए अब न प्रेम था, न विश्वास और न कोई बंधन। फिर उसकी दृष्टि नायक के कंकाल पर पड़ी। खलनायक अभय ने अपने पैर से उसे बेरहमी से ठोकर मारी, जिससे वह जमीन पर जा गिरा। इसके बाद उसने अपना पैर नायक के कंकाल पर रखा और पूरी शक्ति से दबा दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी और नायक का अस्तित्व टुकड़ों में बिखर गया। अभय ये सब देख रहा था, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके भीतर डर नहीं था, उससे भी ज्यादा कुछ था, एक गहरी बेचैनी, जैसे वह अपने ही भविष्य को देख रहा हो। खलनायक अभय ने फिर अपनी दाहिनी आंख की ओर हाथ बढ़ाया। उस आंख में धंसी हुई नायिका की तलवार को उसने धीरे धीरे बाहर खींचा। तलवार निकलते ही उसकी आंख से लाल सुनहरी चिंगारियां फूट पड़ी, मानो कोई लोहार जलते लोहे पर हथौड़ा मार रहा हो। लेकिन उसकी आंख फिर भी खाली नहीं हुई, उसमें आग बनी रही। उसने उस तलवार को एक पल देखा, जैसे किसी पुराने धोखे को पहचान रहा हो। फिर बिना किसी हिचक के उसने तलवार को जमीन पर पटक दिया। एक तेज धमाके के साथ तलवार कई टुकड़ों में टूट गई। उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि उसने अपने अतीत को पूरी तरह नकार दिया है। दरबार में अब सिर्फ खामोशी थी। कंकालों के ढेर, टूटा हुआ सिंहासन, बिखरे हुए हथियार, सब कुछ एक ही कहानी कह रहा था। यह कोई साधारण युद्ध का परिणाम नहीं था, ये नियति के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का अंत था। अभय के भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे अब समझ आने लगा था कि खलनायक अभय ने न केवल नायक और नायिकाओं को मारा था, बल्कि उस दुनिया के नियमों को भी तोड़ा था। यही कारण था कि यह स्थान आज भी अस्तित्व में था, और यही कारण था कि उसे यहां खींच लाया गया था। खलनायक अभय ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी जलती हुई आंखें सीधे अभय पर टिक गईं। उस दृष्टि में कोई आश्चर्य नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ पहचान थी, मानो वह कह रहा हो, आखिरकार तुम आ ही गए। अभय ने पहली बार गहराई से सांस ली। उसे अब साफ समझ आ चुका था कि यह जगह कोई सपना नहीं थी, यह उसका अंत नहीं था, यह उस विरासत का द्वार था जिसे खून, विश्वासघात और विनाश से सील किया गया था। और अब वह द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। वह कंकाल धीरे धीरे मुड़ता है और एक राजा की गरिमा के साथ अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। टूटा हुआ, खून से सना हुआ वह सिंहासन जैसे उसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। उसके बैठते ही दरबार की हवा बदल जाती है। ऐसा लगता है मानो ये स्थान फिर से अपने स्वामी को पहचान गया हो। वह कंकाल अपनी खोखली आंखों से अभय की ओर देखता है। उन आंखों में मांस नहीं है, पर दृष्टि जीवित है, बेहद तीखी, बेहद गहरी। कुछ क्षण तक वह अभय को देखता रहता है, फिर शांत स्वर में पूछता है, तो बच्चे, यहां आकर कैसा लग रहा है? उसकी आवाज में न क्रोध होता है, न धमकी। वह किसी राक्षस की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने शासक की तरह बोल रहा होता है। अभय का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कता है। उसका शरीर उसे चेतावनी देता है कि सामने बैठा अस्तित्व साधारण नहीं है। लेकिन उसी पल उसके भीतर एक और विचार जन्म लेता है, अगर यह कंकाल उसे मारना चाहता तो वह अब तक मर चुका होता। उसे यहां खड़ा रहने देने का मतलब था कि यह मुलाकात किसी और कारण से हो रही है। अभय गहरी सांस लेता है और बिना झुके, बिना कांपे, सामान्य लहजे में जवाब देता है, ठीक ठाक लग रहा है, अगर थोड़ी सफाई होती तो और अच्छा लगता। उसके शब्द दरबार में गूंजते हैं। यह उत्तर इस जगह के लिए बिल्कुल असंगत था, पर शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ क्षण तक कंकाल राजा उसे देखता रहता है, फिर अचानक उसके जबड़े खुलते हैं और वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पत्थरों से टकराकर लौटती है, टूटी दीवारें कांप उठती हैं और जमीन में दबी हुई हड्डियां जैसे उस हंसी का उत्तर दे रही हों। वह हंसी भयावह थी, लेकिन उसमें पागलपन नहीं था, उसमें मनोरंजन था, उसमें रुचि थी। हंसी थमने के बाद कंकाल राजा फिर अभय की ओर देखता है और कहता है, बुरा नहीं है बच्चे, सच में बुरा नहीं है, ये प्रशंसा अप्रत्याशित थी। फिर वह थोड़ा आगे झुकता है, उसकी आवाज गहरी हो जाती है और इस बार शब्दों का वजन अलग होता है। पर एक बात बताओ, वह पूछता है, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? अभय कुछ पल चुप रहता है। वह इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने भीतर झांकता है। उसे एहसास होता है कि डर वहां है, पर वह उस पर हावी नहीं है। अभय शांत स्वर में कहता है, क्योंकि डरने से पहले मैं ये सोचता हूं कि अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते तो मैं यहां खड़ा ही नहीं होता। वह एक पल रुकता है, फिर आगे कहता है, और शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए बुलाए हैं। दरबार में फिर से सन्नाटा छा जाता है। कंकाल राजा की आंखों में जलती आग थोड़ी तेज हो जाती है। वह सीधा बैठ जाता है। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान लौट आती है, लेकिन इस बार उसमें संतोष भी होता है। समझदार हो, वह कहता है, बहुत कम लोग होते हैं जो मौत के सामने खड़े होकर भी सोच पाते हैं। वह सिंहासन की बांह पर अपनी हड्डियों से बनी उंगलियां टिकाता है और गहरी आवाज में आगे कहता है, पर याद रखना, बच्चे जो डर से ऊपर उठ जाता है उसके लिए रास्ते भी बदल जाते हैं। अभय को अब साफ महसूस हो रहा था, ये दरबार, ये राजा, ये सब किसी अंत का संकेत नहीं था। यह एक चयन था, एक आमंत्रण था और शायद एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जिसे उठाने के लिए डर का मर जाना जरूरी था।